आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हुए देश के लोगों को संबोधित किया। इसी रविवार के दिन अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वहां अपना झंडा फहरा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस स्थिति को भारत के अनुकूल नहीं बताया। उन्होंने देश की तमाम सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत बताई है। आज के पॉडकास्ट में मेघालय की भी खबर होगी, जहां पुलिस मुठभेड़ में पूर्व उग्रवादी के मारे जाने के बाद हिंसा भड़क उठी है। मंगलवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इसके मद्देनजर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और पॉडकास्ट के अंत में आपको बताएंगे बिहार के उन उत्साही प्रिंसिपल और शिक्षकों का हाल जो कंधे तक डूबे रहे बाढ़ के पानी में, लेकिन उनके सिर चढ़कर बोलता रहा देशभक्ति का जोश और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रोज फहराया अपने स्कूल में तिरंगा। फिलहाल चलें लाल किले की ओर। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। रविवार को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर ओलंपिक में शामिल हुए 32 खिलाड़ियों समेत 240 ओलंपियन और सहयोगी स्टाफ मौजूद थे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनके सुलझने का दशकों से सदियों से इंतजार था। उन्होंने कहा, देश के पास 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नई शिक्षा नीति भी है। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मैं साधन मानता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और विशेष बात है, इसमें स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर हैं। भारत जब रविवार को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। रविवार को तालिबानी लड़ाकों ने राजधानी काबुल को भी कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का झंडा लहराने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और देश छोड़ दिया। उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने भी अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने के ऐलान के बीच तालिबान ने भारत संग अच्छे रिश्ते की वकालत की है। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि उन्हें भारत संग मजबूत रिश्ते चाहिए। यह भी कहा कि भारत के राजनयिक अफगानिस्तान में एकदम सुरक्षित रहेंगे और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच एयर इंडिया की फ्लाइट AI-244 रविवार को काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच गई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार रिजवानुल्लाह अहमदजई ने दिल्ली पहुँचने पर कहा, अफगानिस्तान के कई हिस्सों में शांति है, लगभग सभी राजनीतिक व्यक्ति काबुल छोड़ चुके हैं, करीब 200 लोग दिल्ली आ चुके हैं। मुझे लगता है कि यह नया तालिबान है जो महिलाओं को काम करने देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने देश की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होना भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान का तालिबान के हाथों में जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान सांठगांठ को मजबूत करेगा। चीन पहले ही उइगुर को लेकर मिलिशिया की मदद मांग चुका है। संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमें अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सजग रहने की ज़रूरत है। मेघालय के पूर्व उग्रवादी चिरिस्टरफिल्ड थांग ख्यू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर शिलोंग में हिंसा शुरू हो गई। स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद राज्य सरकार ने शिलोंग में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार ने कहा, कि शिलांग में मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बीच मेघालय के गृहमंत्री लखमेन रिम्बुई ने इस्तीफा दे दिया है। पुलिस ने बताया कि रविवार रात मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के आवास पर अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंके। यह घटना रात करीब 10:15 पर हुई। पुलिस ने कहा कि वाहन पर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलांग के 3rd माइल स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास के परिसर में पेट्रोल से भरी 2 बोतलें फेंक दी। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही आग पसरी। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। संभावना है कि कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र 1 सप्ताह तक ही चलेगा, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्षी नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सोमवार को दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, समाजवादी पार्टी से राम गोविंद चौधरी, संसदीय एवं कार्यमंत्री सुरेश खन्ना व अन्य दल के नेता मौजूद रहेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर रविवार को इंदौर सेंट्रल जेल से 24 कैदी रिहा किए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल पहुंचकर कैदियों को रिहाई का सर्टिफिकेट दिया। रिहा किए गए कैदियों में 22 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा किए गए कैदियों ने बाहर आकर जब खुली हवा में सांस ली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंदौर सेंट्रल जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि जिन 24 कैदियों का जेल में आचरण अच्छा रहा है उन्हें रिहा किया गया है। इन 22 पुरुष कैदियों में से 20 ने अपना परंपरागत व्यवसाय और खेती करने की इच्छा जताई है। 2 कैदियों के पास कोई रोजगार नहीं होने से उन्हें जेल द्वारा संचालित पेट्रोल पंप पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। वे कल से काम पर आ जाएंगे। रिहा हुए सभी कैदियों को समाज में अच्छे आचार व्यवहार का संकल्प दिलाया गया है। जब देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा था, उसी समय हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक पाकिस्तानी झंडा कहीं से गुब्बारों के संग उड़ता हुआ आया। यह मामला बिलासपुर जिले के कोटधार क्षेत्र का है। यहाँ के गोविंद सागर झील के किनारे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तानी झंडा व गुब्बारे मिले। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ग्राम पंचायत पपलोहा के गांव गाह के रहने वाले ज्ञानचंद ने इसे सबसे पहले देखा। उन्होंने देखा कि गोविंद सागर झील के किनारे झाड़ियों के बीच चमकीले रंग की कोई चीज लटकी हुई है। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो झाड़ियों में हरे रंग का झंडा व गुब्बारे थे। इस झंडे पर चांद और सितारे के निशान थे, साथ साथ गुब्बारों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधि को दी। पंचायत प्रतिनिधियों ने समय रहते पुलिस को इस बारे में अवगत कराया। अतिरिक्त पुलिस थाना प्रभारी राम कुमार अपने दल बल सहित मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी झंडा व गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज की तारीख में भी कई जिलों में बाढ़ का पानी भरा है, लेकिन वहां भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। ऐसा ही इलाका है खगड़िया जिला। यहाँ के गोगरी अनुमंडल स्थित रामपुर मध्य विद्यालय में बाढ़ का पानी अभी भी है। बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल परमानंद प्रसाद ने अपने स्कूल के शिक्षकों के साथ कंधे तक पानी में खड़े होकर झंडोत्तोलन किया, राष्ट्रगीत गाए और झंडे को सलामी दी। प्रिंसिपल परमानंद प्रसाद और उनके स्कूल के शिक्षकों में देशभक्ति का यह जज्बा देखकर सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। रामपुर मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल परमानंद प्रसाद का कहना है कि इससे पहले कभी 15 अगस्त को बाढ़ नहीं आई थी। 2 दिन पहले गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ का पानी स्कूल में घुस गया। ऐसे में झंडोत्तोलन के लिए कोई और जगह बची नहीं थी तो स्कूल कैंपस में वॉलीबॉल के लिए पहले से खड़े पोल से बांस बांधते हुए झंडा फहराया गया। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।